लोग 25 साल के थे जब से हमारे आई वॉज अराउंड 25 व्हेन आई मेट यू फर्स्ट. तो आप वैसे के वैसे ही हो, हम बूढ़े हो गए, आप वैसे के वैसे ही हो. अभी आप कोमा में गए,
बहुत बुरी हालत है.
अगर अभी आप कोमा में गए वापस आ गए, आपको अभी कौन कह सकता है अभी आप इसका क्या रहस्य, आप कहाँ जाकर आए हो, कौन से लोग जाकर आए हो, इतनी पावरफुल कीर्तन करवा रहे हो. सब
पावर तो विल पावर होती है व्यक्ति की, आपका निश्चय और इम्पोर्टेंस, क्या किस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो. कोई लोग शरीर को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कोई लोग फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कोई लोग धन को ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं. तो जिसकी जहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है, अभी मैंने देखा है लोगों को तो बुखार भी होता है तो काम पे जाते हैं, स्नो पड़ रही है काम पे जाएंगे, बारिश हो रही है काम पर जाएंगे, बहुत थकान हो रही है बिल्कुल मन नहीं कर रहा है काम पे जाएंगे, जाते हैं. क्यों? मुझे पता, नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो घर के खर्चे कैसे चलेंगे. इम्पोर्टेंस है उस चीज की, इसलिए वो करते हैं. मेरे लिए यही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं किसी भी सेवा के योग्य नहीं हूँ, एक सेवा महाराज जी ने दी है. तो बस मेरी यही इच्छा है कि जब तक सांस चल रही है शरीर में तब तक मैं ये सेवा करती रहूं जो सेवा महाराज जी ने मुझे दी है. तो बस ये विचार ही पावर दे देता है, विल पावर, उससे विल पावर बढ़ जाती है तो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है. मुझे भी पता है कि हार्ट अटैक के बाद बोलना नहीं चाहिए, उससे हार्ट पे जोर पड़ता है. लेकिन मुझे ये भी पता है कि अधिक से अधिक यही तो होगा ना कि डेथ हो जाएगी. वो तो सबकी होनी है, एक दिन हमारी भी होनी है, और हमारे टाइम आने के पहले होगी नहीं. और चाहे हम कितनी भी अपने शरीर की रखवाली करें, जब हमारा टाइम आ जाएगा डेथ का, उसके बाद हम अपने आप को बचा नहीं पाएंगे. इतना निश्चित है डेथ का समय, तो हम पीछे क्यों हटे. सेवा ही तो परम धर्म है ना, भक्ति का मतलब ही क्या है, सेवा. तो जब तक शरीर में दम भगवान दे रहा है, श्री महाराज जी की कृपा से बोलने की शक्ति जब तक है, कीर्तन करने और कराने की शक्ति जब तक है, तब तक हम करेंगे. मान लो हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते डेथ हो जाए, तो इससे बढ़िया डेथ और क्या हो सकती है कि सेवा करते करते डेथ हो गई. संसार में भी अगर कोई काम पर होता है उसकी डेथ हो जाती है, उसको कंपेंसेशन मिलता है काफी. तो अगर हमारी डेथ हो जाएगी तो भगवान की ओर से कुछ तो हमें भी मिलेगा ना उसका बेनिफिट. हम तो उसी लालच में करते हैं, बेनिफिट के लालच में.
रिलेटेड क्वेश्चन दीदी, आपको कभी ऐसे ग्लिम्सेस या आपको पता चल जाता है कि फ्यूचर में क्या, लाइक आप सीधा गोलोक जाओगे या फिर आप वापस से कोई शरीर धारण करके वापस से हमें, हमारे लिए महाराज जी आपको भेज देंगे ताकि हम.
महाराज से पूछो हमें क्या पता क्या करेंगे, हमें नहीं पता हमें कहाँ जाना है. क्योंकि मैं भगवत प्राप्त संत तो हूँ नहीं, मैं चैलेंज के साथ कह दूँ कि मैं गोलोक ही जाऊंगी. और कहाँ जाना है, कौन सा शरीर मिलना है, हाँ ये बात तो पक्की है, 100% श्योर है अभी तक जो स्थिति है कि मनुष्य शरीर तो मिलेगा और अच्छी जगह जन्म मिलेगा, क्योंकि ये जन्म अच्छा है.
दीदी तो महाराज जी के हर लाइक जो सत्संगी है जो सीरियसली ट्राई करता है रूप ध्यान करने का और चल रहा है टाइम दे पा रहा है, तो ऐसे हर सत्संगी को फ्यूचर में मानव देह मिलेगा ही.
हाँ, जीवन के लास्ट मोमेंट तक इस मार्ग पे चल रहे हो सिंसियरली तो ये 100% श्योर है कि मानव देह मिलेगा और अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा.
धार्मिक का उतना सवाल नहीं है, आपके साथ जब जनवरी में जब आप बहुत बीमार पड़ गए थे एंड बहुत लोग कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बारे में एंड आई वांटेड टू आस्क यू इन जनरल मे बी नॉट सो मच इन पब्लिक उस समय आपको लाइक डिड यू फील एनीथिंग डिफरेंट और डिड यू हैव एनी विजन्स जब आप आईसीयू में थे बहुत बीमार जब थे मतलब बहुत ही सीरियस थे
एक्चुअली जब मैं बहुत बीमार थी और जब सबसे ज़्यादा कष्ट का समय था जिसे देखकर औरों को भी तकलीफ हो रही थी उस समय मैं होश में ही नहीं थी मुझे कुछ पता नहीं कब कष्ट आया और कब चला गया क्योंकि जब वो कष्ट कम हो गया ऑलमोस्ट चला गया उसके बाद मैं होश में आई तो मैंने देखा है कि बहुत बड़े हॉल में मैं लेटी हुई हूँ तो मैंने पूछा लीसा से ये क्या है कहाँ है मैं समझी कोई रिट्रीट खत्म ही सब तो चले गए मैं क्यों बैठी हूँ लेकिन कहाँ है तो इनका नहीं हॉस्पिटल है तो मुझे क्योंकि उसके पहले मैं मनगढ़ में भी बीमार पड़ी थी और दीदी लोग आए थे हमारे कमरे में और वो लोग उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भेजा था तो मैं समझी वो वही वाला ये घटना है तो मैंने कहा कि अच्छा तो दीदी लोग आए थे तो मैंने कहा नहीं दीदी लोग नहीं आए थे हमने कहा नहीं श्यामा कृष्णा तो आए थे बोलते नहीं वो तो इंडिया में है तब मुझे ध्यान आया वो मैं तो कनाडा में हूँ तो महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा है इसी को कहते हैं युवक क्षेम वहन करना कि जो कुछ भी हमारे प्रारब्ध में था कष्ट वो सब हुआ वो बीता हमारे शरीर पर और सबको दिख रहा था कि वो बहुत शरीर में कष्ट है लेकिन महाराज जी ने योगक्षेम वहन किया यानी उन्होंने उस कष्ट को मुझे मूर्छित करके समाप्त कर दिया क्योंकि जब मैं मूर्छा में थी मैं कॉन्शियस नहीं थी तो मुझे पता ही नहीं शरीर में क्या हो रहा है उन्होंने मुझे यहाँ तक याद है कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको वेंटिलेटर पे हम रखे जा रहे हैं दैट्स ऑल राइट तो मैं समझे कि मुंह में कुछ लगा देंगे नाक में ऐसा कुछ यही होता होगा वेंटिलेटर पे रखने का मतलब तो मैंने कह दिया हाँ जो करना है करो मुझे नहीं मालूम था अंदर पाइप डालेंगे और तकलीफ उसे वहीं पर वो जो पाइप डाला था उसका अभी तक पूरा प्रभाव नहीं गया है अभी भी है उसका प्रभाव लेकिन मुझे पता ही नहीं कब डाला और कब निकाला कुछ भी मुझे आइडिया नहीं है उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो वो कष्ट का समय तो यूं ही बीत गया मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और इस बार भी जब हार्ट अटैक पड़ा तो मुझे तो बस थोड़ा सा भारीपन सा यहाँ पर महसूस हो रहा था तो जब उसने बताया कि हार्ट अटैक आपको तुरंत चलना पड़ेगा तो मैं उसका मुंह देख रही हार्ट अटैक में तो लोगों को बड़ी तकलीफ होती है तड़पते हैं लोग परेशान होते हैं हमें तो कुछ नहीं हो रहा है तो होश में हो अच्छे से कोई भी परेशानी नहीं जरा भी कहीं दर्द नहीं हो रहा है रास्ते भर पूछता है आपको कहीं दर्द हो रहा है अरे फीलिंग नौसिया आप जी घबरा रहा है आपको चक्कर आ रहा है ये हो रहा है कुछ नहीं हो रहा था मैं तो उसे कहती थी मुझे कुछ नहीं हो रहा है फिर वहाँ पर भी गए उन्होंने टेस्ट लिया और उसके बाद उन्होंने बताया दो स्टेंट्स पड़ेंगे मुझे तो पता ही था स्टेंट क्या वाला है उन्होंने कहा दो स्टेंट डालने उन्होंने कहा ठीक है उन्होंने क्या डालेंगे जो भी होगा होगा हमें क्या करना है उन्होंने कहा ठीक है और स्टेंट्स भी ये पड़ा तो मुझे या तो किसी को नहीं होता या मुझे नहीं हुआ मुझे नहीं पता बिल्कुल भी मुझे नहीं पता कि कब उन्होंने डाल दिया उसमें इतना सा भी कष्ट मुझे हुआ ही नहीं और अब भी नहीं है महाराज जी की कृपा से तो ये बात बहुत प्रेरणादायक है मैं पूर्ण शरणागत नहीं हूँ महाराज जी के लेकिन फिर भी उनकी इतनी कृपा है कि पूरा पूरा वो योगक्षेम वहन करते हैं तो जो लोग पूर्ण शरणागत होंगे तो उनका वो कितना ख्याल रखते होंगे उनको तो कष्ट सवाल ही नहीं कोई आए और जो भी उनकी शरण में है मुझे तो इससे यही प्रतीत होता है कि जो भी महाराज जी की शरण में बस विश्वास रखो कि महाराज जी हमारे साथ हैं तो हमारे प्रति जो भी होगा कुछ भी होगा तो हमारे कल्याण का होगा। जिसमें हमारा कल्याण नहीं वो हमारे साथ हो ही नहीं सकता। जो गुरु की शरण में है उसका कुछ भी, कोई उसके पास प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कोई प्रॉब्लम अगर आ गई तो प्रॉब्लम की प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये विश्वास रखिए बस। ये जो छोटी-छोटी बातों के लिए हम टालते रहते हैं, सत्संग में जब आना होता है, रिट्रीट वगैरह होती, कितना लाभ होता है अपनों का रिट्रीट में। ढाई दिन तक लगातार एक ही एटमॉस्फेयर मिलना और भगवत विषय ही सुनना, कितनी कमाई हो जाती है आप सोच नहीं सकते। लेकिन हर साल ये होता है, हर बार ये होता है, जब रिट्रीट खत्म होती है सब लोग कहते हैं दूसरी रिट्रीट कब होने वाली, हम तो जरूर आएंगे। ये अभी से हमको पहले से बता देना हम तो आएंगे। और जब दूसरी रिट्रीट आती है, हाँ दीदी मन तो है, बात ये है, बात वो है, जरा बच्चों का एग्जाम है, जरा वो जरा बीमार है, जरा उसको वहां लेके जाना है, यानी कितने बहाने इतने बहाने बनाने की, इतनी तेज बुद्धि हो जाती है उस टाइम कि ऐसा बहाना बताओ कि बिल्कुल कन्विंस हो जाए दीदी कि हाँ भाई बात तो बिल्कुल जेन्युइन है, ठीक है, अच्छा भाई मत आओ तुम, कोई बात नहीं, ठीक है हम कह भी देंगे कि मत आओ, मैं किसी किसी का देख लेती हूँ कि वो तो नहीं उसको आना, तो मैं दोबारा कहती ही नहीं उससे मत आओ, तो नुकसान मेरा तो नहीं होता, नुकसान तो आप लोग का ही होता है, हम तो अपनी सेवा दे ही रहे हैं। चाहे आज चार आदमी बैठे हों, 40 बैठे हों, 400 बैठे हों, हम तो उतना ही बोलेंगे, हम तो उतनी ही सेवा करेंगे। अब जिसको लेना है लाभ लो, नहीं लेना है घर में बैठो आराम से सो, बढ़िया बिस्तर घर में मिलता है, बढ़िया खाना मिलता है, जब मन में आए सो, जब मन में आए जागो, मन माना करो। और फिर उसके बाद जब 84 लाख में घूमना पड़ेगा ये बताया जाता है, अब देखा जाएगा। माँ जी कहते हैं देखा नहीं जाएगा, भोगा जाएगा, तब पता चलेगा जब भोगोगे। सोचो एक कुत्ता है, आपने रोटी बना के रखी, भूखा है वो, देखता है कोई नहीं, जल्दी से आके रोटी लेकर भागता है, तो हम उसको मारते हैं, डंडे से मारते हैं। अरे जैसे हम भूख, हमें भूख लगती है उसे भी लगती है, बेचारा रोटी ही लेने तो आया था, वो खा रहा है रोटी, अपनी भूख मिटा रहा है, तो हम उसको डंडे से मार रहे हैं, क्या गुनाह है उसका। तो यही हालत हमारी होने वाली है यदि हमने सत्संग नहीं किया, भगवत कृपा का दुरुपयोग किया। ये भगवत कृपा का मजाक उड़ाना है। जैसे आपके, आप कह रहे हैं भूख लगी है, भूख लगी है, और आपके सामने 56 व्यंजन से सजी हुई थाली रखी है, और आपके इसको ऐसे खसका देते हैं, अभी नहीं खाएंगे। ऐसे ही उनकी तो कृपा बरस रही है, जैसे उनको गरज है हमारा कल्याण करने की, वो तो कृपा बरसाते जा रहे हैं और हमारे पास फुर्सत नहीं, उस कृपा को लूटने की फुर्सत नहीं हमारे पास, इतने लापरवाह है। तो उसका परिणाम क्या होगा, नरकों में भाग घूमना पड़ेगा, कुत्ते बिल्ली गधे बन के एक एक रोटी के लिए तरसना पड़ेगा, कभी भूखे रहने के कारण मर जाएंगे, कभी प्यासे रहने के कारण मर जाएंगे, कभी हमारे पास कोई शेल्टर नहीं है इसलिए हम धूप में मर जाएंगे, कभी सर्दी में मर जाएंगे, ये गति हमारी होने वाली है यदि हम नहीं चल रहे रास्ते। कितनी कृपा आप सब पर बरस रही, हम उसको रियलाइज नहीं कर रहे हैं, हमको रियलाइज करना है। तो सबके ऊपर कृपा तो समान रूप से होती है। भगवान क्या ऐसा नहीं है कि ये बेटा लायक है तो इसको ज्यादा दे दो पैसा, ये बेटा नालायक है तो कम दे दो, भगवान है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, वो सबको समान रूप से देते हैं, हम मानते ही नहीं। वो हमारे पिता हैं, हम मानते ही नहीं कि जिस आनंद के लिए हम कभी स्त्री में, कभी पति में, कभी बाप में, कभी बेटे में, कभी धन में आसक्त तो हो रहे हैं, तो वो भगवान से केवल मिलेगा, इसमें है ही नहीं, ये बात ही नहीं हमारे माइंड में घुस पा रही। उनके लिए हमारे पास बहुत टाइम है, जिनसे कुछ नहीं मिलना है दुख के अलावा, उनके पास, उनके लिए बहुत टाइम है हमारे पास, जबरदस्ती हम टाइम निकालते हैं उनके लिए। लेकिन जिससे हमारा कल्याण होना है, जिसके लिए हमें मानव देह मिला है, उसके लिए फुर्सत नहीं, टाइम नहीं है हमारे पास, छुट्टी नहीं है हमारे पास। बाहर से 10 जगह से लोग आए हुए हैं और यहां वालों को फुर्सत नहीं, उनको काम पर जाना है, कुछ और कुछ काम है, आराम, बहुत थक गए, आराम करना है। ये लापरवाही है, यही लापरवाही अनादिकाल से हम करते चले आ रहे हैं, इसीलिए भी घूम रहे हैं चौरासीरा। ऐसा नहीं कि महाराज जी हमको पहली बार मिले, महाराज जी हमें कितनी बार मिल चुके हैं, चैतन्य का उनका अवतार हुआ, महाप्रभु चैतन्य के रूप में हम सब थे वहां, ऐसी लापरवाही करते रहे, वो हमें सेवा देते रहे हम उनका तिरस्कार करते रहे, वो हमें कीर्तन में बुलाते रहे हम बहाने बनाते रहे, झूठ बोलते रहे उनसे, दोषी का फल भुगत रहे। आज भी हमारी भक्ति इतनी कम है, इतने जन्मों से हम भक्ति कर रहे हैं तो भी हम 60% तक भी नहीं पहुंच पाए, लापरवाही के कारण और कोई कारण नहीं। आज भी लोग देर से आए, क्यों देर से आए, लापरवाही, सिर्फ लापरवाही। आप में से कोई भी ना मेरे बराबर वृद्ध है और ना मेरे बराबर बीमार है, लेकिन मैं तो टाइम से आई हूं आप लोगों के लिए, और आप अपने लिए टाइम से नहीं आ पाए। सबका एक आंसर था, बहुत थक गए थे, कराया तो सारा हमने बैठ के यहां पर थका कर, और फिर कौन से रोज रोज की बात है, ये एक दिन की तो बात थी, दो दिन तो आप लोगों ने साधना की और आज तो आधे दिन होनी है साधना। सोचना है हमें, ये मानव देह बार बार नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल से मिला है। कबहु करी करुणा नर दे देत ईश बिनु हेतु स्नेही, कबहु करी करुणा, भगवान की बहुत कृपा बड़ी होती है तब मानव देह मिलता है, और फिर भारत में जन्म मिल जाए, फिर महाराज जी जैसा गुरु मिल जाए, और इतनी हाई क्लास फिलॉसफी, आप सबको ज्ञान है उसका, इतनी हाई क्लास फिलॉसफी आपके हाथ में, फिर भी लापरवाही, लापरवाही, केवल लापरवाही के कारण हमारी प्रोग्रेस रुकी हुई है। ये लापरवाही हम लोग को छोड़ देनी है, पता नहीं कै दिन या कै क्षण बाकी है हमारी लाइफ। हम ये भी नहीं कह सकते चैलेंज के साथ कि आज का दिन तो है हमारे पास, कुछ नहीं पता कि आज के भी कितने क्षण हमारे पास में, नहीं जानते हैं। तो हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये जो होती है साधना, ये हम लोग साधना शिविर वगैरह करते हैं, इसी को रिमाइंड करने के लिए होती है। सोचो बार बार कि ये जीवन चला गया तो हम क्या करेंगे, क्या मिलेगा हमको, तो अभी भी टाइम है, जितना समय भी बाकी है हमें सावधान हो जाना है। सावधानी पूर्वक अगर व्यक्ति कोई सोच ले कि अब हमें बस इसी में लगा देना है, क्या होगा, बहुत से बहुत आपका जो धन है, धन जो आप कमा रहे हैं वो नहीं आएगा। भूखा तो कोई इस कंट्री में मरता नहीं, धन नहीं आएगा, अब भौतिक दृष्टिकोण से आप गरीब हो जाएंगे, आपके पास खाने भर का रहेगा पैसा, तो क्या हुआ? इसीलिए तो जीवन मिला है, ये ऐश आराम करने के लिए हमको मानव देह मिला है क्या? बहुत कर लिया ऐश आराम, अब तो चाहे सब भगवान ले लें। भगवान से यही प्रार्थना कर रही है कि जो कुछ हमारे पास में है, जो कुछ है हमारे पास सब ले लो, कुछ नहीं चाहिए हमें, लेकिन हमें अपना प्रेम दे दो, भक्ति दे दो, यही प्रार्थना हमसे करनी है। सीमा जी बार बार कहते हैं कि संसार चला जाना ये दुर्भाग्य नहीं है, ये तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, तभी तो वैराग्य होता है। हमें उसका दुख नहीं करना चाहिए कि संसार छूट रहा है, ये सुख की बात है, ये आनंद की बात है कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है जो हमारा संसार छूटता जा रहा है। यो तो हम छोड़ते नहीं, तो जब जूते चप्पल लगते हैं संसार के तब छूटता है संसार, तो किसी बहाने भी छूटे, जब क्षणकाल छूटेगा तभी तो ईश्वर की ओर हम चलेंगे। इसलिए एक एक क्षण हम लोग को यूटिलाइज करना है, अपने अपने घर जाके हम लोग को यही सोचना है, ये सोचिए कि कम से कम 2 घंटा तो रोज अपने उपासना के लिए साधना के लिए निकालना ही है, और फिर उसी प्रैक्टिस को सारे दिन यूज करना है, फील करना है कि हरि या गुरु के प्रेजेंस को, वो हमारे साथ में है, ये हम लोग को फील करने की प्रैक्टिस करनी, कुल यही तो साधना है। 2 घंटे आप बैठ के रूप ध्यान की प्रैक्टिस कीजिए, और फिर सारे दिन कुछ भी कर रहे हैं, सब काम करने हैं, काम पे जाना है, खाना बनाना है, घर की सफाई करनी, सब काम करो, लेकिन उनको मन में रखो, रख कर उनके प्रेजेंस को फील करते हुए कि वो हैं, बस यही मेन साधना है, यही हमें करना है, और इसका अभ्यास हमें करना होगा, तभी यहाँ पर आकर साधना शिविर करने का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा।